लैसा अलैकुम जुनाहुन, तुम पे इस पर कोई गुनाह नहीं है। कि अन तब्तगू फजल मिन रब्बिकुम, कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। कैसे? यहां भी थोड़ी सी बात समझिए। कुछ लोग हज के लिए जब जाते हैं, या जाते थे उस दौर में भी, तो कुछ ना कुछ ऐसा सामान रख लेते थे अपने साथ कि जो मक्का में जाके बेचेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बन जाएगा और उससे सफर के खर्चे इस्तेमाल कर लेंगे। आप कह लेंगे पैसों की सूरत, यानी कैश की सूरत में चीजें पास ना होती थी तो कुछ सामान ले जाते थे और वहां जाके उसको एक दफा बेच के पैसे ले लिए। अब ये बात थी, दूसरे लोगों ने इसको नापसंद किया कि ये क्या बात है, तुम तो कारोबार करने आए हुए हो। तो अल्लाह ताला ने कहा डोंट वरी, मैं इजाजत देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अगर नीयत हज की हो, गालिब बात जो है वो हज और अल्लाह से मोहब्बत और ये सब है, लेकिन सिर्फ जरूरियात पूरी करने के लिए कोई हज के दौरान इस किस्म की खरीदो फरोख्त कर ले तो नो प्रॉब्लम। ये बोथ पे भी हो सकता है, आप इधर से गए तो कुछ चीजें वहां ले गए ताकि वहां से बेच के उसको इस्तेमाल कर लें, पैसे ले लें। या ऑपोजिट भी हो सकता है, आप किसी का यहाँ काम है, कोई कपड़े बेचता है, कोई अबाए बेचता है, कोई स्काफ बेचता है। अब क्या इस गम में पड़ जाए, हाय हज के लिए आए हैं इसलिए यहाँ से पिंदे नहीं खरीद सकते, हज के लिए आए हैं तो यहाँ से हेड कैप्स नहीं ले सकते, हाय हज के लिए आए ग्लव्स नहीं ले सकते। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तकवा का मस्नूई ख्याल है। और यहाँ से पता चलता है कि दीन दुनिया को कंडेम नहीं करता, बल्कि अत-ताजिर सुदूक, सच्चा ताजिर नबियों के साथ होगा क्यामत के दिन। झूठी कसम ना खाए, बहुत ज्यादा झूठ बोल के सौदा ना बेचे, नफे में कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे ना चला जाए। तो यहां से आप देखिए कि दीन का कितना खूबसूरत मिजाज है कि अगर कहीं तुम्हें कुछ अपनी जरूरत के लिए लेना देना पड़े तो कोई हरज की बात नहीं है, तुम ये कर सकते हो। और लेकिन शर्त क्या है, आप दोनों में फर्क समझिए। एक शख्स था हज के लिए गया और वहां कुछ कारोबार कर लिया, एक सिचुएशन। दूसरी क्या है, कोई जा कारोबार के लिए रहा था, है ही टोटल कारोबार ही है वहां, मीटिंग दिस, जाके कहता मैं बीच में हज कर लूं, तो वो पसंदीदा नहीं है। यानी गालिब और डोमिनेंट राय क्या है कि बंदा नेकी के लिए जाए लेकिन हल्का फुल्का ये काम कर ले तो कोई हरज की बात नहीं, बात आखिर में करेंगे, पहले आयतों को पूरा करते हैं। फइजा अफत तुम मिन अरफातिन, और जब तुम अरफात से फिरो, लौट जाओ, पलट जाओ, फज़कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, तो अल्लाह का जिक्र करो या अल्लाह को याद करो मस्जिद हराम के पास। किस बात पे, वस्कुरूहु कमा हदाकुम, और उसको याद करो जैसे उसने तुमको हिदायत दी। वइन कुंतुम मिन कब्लिही लमिन दालीन, हालांकि इससे पहले तुम तो भटके हुए लोगों में थे। नेमत हिदायत पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्यों, कैसे करो? यहां से आपको हज का एक और बड़ा खूबसूरत एंगल दिख रहा है, और वो क्या है कि मैदाने अरफात। अब यहाँ थोड़ा सा आप एंगल बना लें, आपको कुछ कहेंगे तो वीडियो भी छोटी सी दिखा देंगे, और जब आप हज पे जाने वाले होंगे तो तब भी लिंक दे देंगे। लेकिन आप देखिए कि असल चीज हज का जो रुकन है ना, वो वकूफ़ अरफा है। वकूफ वक्फ याकिफ से खड़े होने को कहते हैं। अरफात वो मैदान है जो आपको भी एनालिसिस में बता दिया गया। अब अरफात के मैदान में जाना वही हज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हज अरफातुन, बस असल हज तो अरफे के दिन का है, बाकी हज का कोई रुकन छूट जाता है ना, कोई काम इधर उधर का, उसको आगे पीछे कम कर सकते हैं, किसी का कफारा है। लेकिन अगर मैदान अरफात में 9 ज़िलहज को बंदा नहीं पहुंचता तो उसका हज नहीं होता। ठीक है, मुख्तसिर सा मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में बोलती हूँ कि असल में हज क्या है। उमरा तो शुरू में हो गया, वो तो अलग था। असल हज क्या है, 8 ज़िलहज को, यानी ज़िलहज की 8 तारीख को मक्का मुकरमा से निकलना होता है और वो रात मीना में गुजारनी होती है। ठीक है, बस ये हज का वो दिन है। अगले दिन 9 ज़िलहज, इसको यौमुल अरफा कहते हैं। पहला दिन जो ना, इसको यौमुल तरविया भी कहते हैं, मैं दिनों के नाम बाद में जरूरत हुई तो लिखा दूंगी। ठीक है, अगला दिन आ गया जिसको हम सब यहाँ बाहर वाले जो दुनिया में बैठे कहते हैं आज हज है। सुबह के वक्त मीना से काफले निकलते हैं और अरफात की तरफ चल पड़ते हैं। कोशिश क्या होती है, दोपहर से पहले वहां पहुंच जाए। आप सुबह 10 बजे भी वहां पहुंच जाए या 2 बजे भी पहुंच जाए, आप वहां जाकर जोहर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। है हैरत की बात, गए नेकियां करने, नमाजें कजा कर रहे हैं, अकल में आती कोई नहीं बात। बैठ जाए वहां आप चुप करके, जोहर का वक्त गुजर जाता है, उसके बाद मिला लेते हैं लोग कुछ जोहर के वक्त में, कुछ असर के वक्त में, लेकिन अमूमी तौर पे क्या है कि जोहर और असर दोनों को जमा किया जाता है। रश के लिए कोई जोहर से असर पढ़ ले, कोई असर से जोहर पढ़ ले, कोई हर, लेकिन कसर पढ़ी जाती है, 2 रकत फर्ज जोहर के और 2 रकत असर के। उसके बाद से लेकर मगरिब, यानी जिसको गुरूब आफ्ताब कहते हैं, इस दौरान वहां अरफात के मैदान में खड़े होके दुआएं मांगनी होती हैं। बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको कहते हैं वकूफ़े अरफा। बात वाजे, क्या नेकी की आपने एक्स्ट्रा? नथिंग, नमाज भी थोड़ी पढ़ी। अब जिनको आदत है 100 100 नफिल पढ़ने की, वो तो बड़े तबाक से गए हज पे कि हम नेकियां करने जा रहे हैं, पता क्या चल रहा है, कल से निकले हुए मक्का से, सारा दिन और इतना रश, इतना इज्तिहाम होता है कि ये जो 7 8 10 6 मील का है, 12 मील का फासला है, ये 6 6 घंटों में होता है। यही काबत तक वो नहीं वजादको, इतने धोखे हो जाते हैं। बाज दफा आप गए पैकेज लेके होटल देखना, देखा आपको गुस्सा आ गया, ये तो वो नहीं है, सब्र करो। काफलों में कभी ग्रुप्स में जाते हैं, कभी कफील है उनसे झगड़े, कभी ग्रोहों से खबर, लोग गिप नहीं करते रहते हैं, आइंदा नहीं इस ग्रुप के साथ जाना, आइंदा नहीं, इन्होंने ये नहीं दिया, कभी खाने पे झगड़ा, कभी किसी को मिर्चें नहीं खानी, किसी को नमक नहीं खानी, का बस तुम ये सफर की जो हालत है ना, इसमें सब्र करो, यही तुम्हारा हज है। 8 के से लेकर 9 की शाम पे आप आ गए हैं, कोई एक एक्स्ट्रा नफिल जिसको आप हज के नफिल के नाम पे, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा जंतर मंतर, कुछ भी, नथिंग। अगर आपको आदत नहीं है तो आप जैसे बस अपने नमाजों के वक्त में बीच में लैयर मूड में होते हैं, आप वैसे ही रहेंगे, तहज्जुद नहीं पढ़ते थे तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे, यानी कोई नहीं, सिर्फ इस ट्रबल और इस हार्डशिप का नाम हज है। असल में ये ट्रेनिंग है कि उम्मत मुस्लिमा जम के ना बैठ जाए। चलो तू साबित वो सैयारा, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मुझे आता नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि तुझे अपने असलाब से क्या निस्बत, ए आज के मुसलमान तुझे क्या निस्बत, तू कैसे अपना ताल्लुक अबू बकर उमर और अली और फलां से जोड़ता है, तू साबित, तू जम के बैठा हुआ अपने जमीन के टुकड़े के ऊपर, मेरा घर, मेरी सल्तनत, मेरा मुल्क, मेरा पैसा, मेरी फैक्ट्री, मेरा कारखाना, तेरी जिंदगी का हम और गम बस तेरा घर तेरा खानदान है। वो सैयारा अस्सा होना, अब सूरह तौबा में पढ़ेंगे, अल्लाह ने ईमान वालों की बहुत खूबसूरत सिफात है, और उसमें आखिरी सिफत के वसाए होना वसाहत, सियाहत का नाम तो सुना ना, टूरिस्ट, टूरिज्म। आज लोग इस दुनिया को डिस्कवर करने के लिए या अपने इंटेलेक्ट को खुश करने के लिए दुनिया का सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं ना, उधर जाते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, कर ली तो मिला क्या, बस नाम आ गया कि आपने K2 को सर कर लिया, कोई बर्फों पे चलते हैं, कोई पहाड़ों को, लोग चांद पे चले। अल्लाह मुसलमान को सिखाता है, तेरा एक एक कदम इबादत बन जाएगा अगर तूने हज की इन चीजों से ये सीख लिया कि तूने अल्लाह के दीन के लिए चलना है। अब ये नहीं मतलब कि सब हम घर छोड़ के भाग जाए, मुल्क छोड़ दे, लेकिन दिल की हरकत तो शुरू हो, हमारी तो हर धड़कन में ये तड़प होनी चाहिए कि अल्लाह तेरे बंदे आग की तरफ ना जाए, अल्लाह तेरे बंदे इस्लाम से महरूम ना रह जाए, अल्लाह तेरे बंदे कहीं बोल के, कहीं चल के, कहीं दीन का गलबा इल्म के साथ, कहीं अमल के साथ, मस्जिदों में। अब जिन बंदों की नमाजों में खुशू नहीं है, आप बताएं उनके किताल में खुशू होगा? कल के सबक की एक बात दोहरा रही हूँ कि कल हमने किताल पढ़ा, बार बार उसमें किताल में क्या रहा था, ज्यादती ना करो, अल्लाह के रास्ते में रहो, अच्छे काम करो। आप बताइए कि जिस नस्ल या जिस मुस्लिम जनरेशन की नमाजों में लिल्लाहियत नहीं है, क्या उनकी जंगों में लिल्लाहियत होगी? वो तो वाकई वहशी बन जाएंगे, वो तो बर्बरियत का इजहार करेंगे, वो तो फिर लोगों को खरी खरी सुनाएंगे। जो यहाँ 5 वक्त मस्जिद में नहीं जाता, मुझे बताइए उसको हज के, ये अभी मैंने 2 दिन बोले, अभी अगला सफर बोलती हूँ, वो वहां जाके क्या चांद चढ़ा लेगा, क्या काम करके आ जाएंगे? ये है वो बड़ी वजह कि आज हमारे लोगों में हज करके भी लोग आते हैं तो इल्ला माशाल्लाह, दिल उसका ही बदलता है जिसका बतजब्बद फ इन खैर ज़ाद तक्वा। और ये जो हाथों में आज गैजेट्स है ना, वल्लाही अब तो हरम में भी ये कुछ देखने को मिलता है कि वहां भी लोग चैटिंग और फोन और साथ है तवाफ हो रहे हैं और साथ फोन पे बातें हो रही हैं और बिजनेस डील्स हो रही हैं। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हमारा दिल नहीं रब से जुड़ता। हज कहते तुम्हारा दिल अल्लाह से जुड़े। कट कट ये हर धड़कन दिल की क्या बताती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये करो अल्लाह के रास्ते में भागो दौड़ो कहीं दीन के निफास के लिए कहीं दीन को फैलाने के लिए कहीं तुम इबादात के लिए। और इसमें वो वक्त मुझे तो भूलता ही नहीं कितने साल हो गए अब तो खैर से लेकिन यकीन करें वो जो जोहर से असर या असर से मगरिब का वक्त है क़यामत का दिन लगता है क्योंकि सुबह से उठे हुए एक दिन पहले से मक्का में कई घंटे बसों में बैठने के बाद हम मक्का से मीना पहुंचे थे और उसके बाद जब मीना से आपने अरफात पहुंचना होता है लाइने के अखीर बसों से उतर के बस के साथ साथ चल के वो आगे पहुंच गए। हमने खुद जो हज किया अल्लाह के हुक्म से अभी अगला जो सफर आएगा अरफात से मुजदलिफा हम पैदल आए। हमारे सब बच्चे भी थे पूरी फैमिली और बहुत सारे लोग थे हमारे वो और हम जल्दी पहुंच गए और हमारी बस के जो लोग थे वो पता नहीं कब पहुंचे होंगे। इतना बंदा वहां जाके मट्टी में मट्टी होता है पसीना गर्मी सफर थकन और खाना क्या है जी वो आपके खेमे में वो पुलाव पका हुआ जाके ले आए जिनकी यहाँ ही मिजाज नहीं के चम्मच पे दाग क्या है वो खाती नहीं। फिर उन्होंने भी क्या अपने छुपे हुए पैकेज को भी टिन पैड खोल के रखा होगा कि हम नाजुक रहे। हज बंदे की अना तोड़ता है जैसे मुझे किसी की बात याद आती है अल्लाह अपने घर बुला के जलील बड़ा करवाता है यानी जलील से मुराद उनका लफ्ज जलील उर्दू वाला नहीं अरबी वाला था कि तोड़ता है। ला जलूल का लफ्ज पढ़े ना गाय के लिए तोड़ के रख देता है और जिसकी वो अना या टिशन मिशन होना और क्रीस ना खराब हो और पॉलिश सही है और मोजा ठीक है सॉक्स ठीक है वो फिर हज जा करके भी आते हैं तो परेशान उनके लिए। अब देखें आप मजे की बात देखें कि जो हज के लिए जाते हैं ना मक्का में मदीना में जितने मर्जी पैकेज ले लें आला से आला होटलों के लेकिन मीनार मुजदलफा में कोई आपको 5 स्टार होटल नहीं दिखेगा कि चलो कम अज कम ये 2 2.5 दिन तो फिर मट्टी में बैठो। और खिलाफे तबा लोग होते हैं वहाँ कोई बोल रहा है कोई गांव से आया कोई जंगल से आया अल्लाह कहता है यहाँ टूटो। आज भी याद आता है और उन दिनों की भी छोटी छोटी दुआएं यानी सिर्फ अल्लाह की जिक्र है विरद है ला इलाहा इल्लल्लाह हो अल्लाह की बड़ाई है। पूरा हज बंदे को ये सिखाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह बस उस वक्त आप खड़े हो दुआ मांगे। और वाकई वो एक अजीब और वॉशरूम नहीं होता है सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो लोग मिजाज बिगड़ जाते हैं वेस्ट में रहते हुए अमूमन देखिए के वॉशरूम बहुत अच्छे साफ सुथरे होते हैं ना। अब वो जाके वहां जाते ही नहीं कहते मुझे गंदा लगता है मुझे बू आती है मुझे स्मेल आती वो एक और मुसीबत सर पे बच्चे साथ है तो वॉमिट कर रहे हैं अब दोए का उनके कपड़ों को ऐसे ही पकड़ पकड़ के कर रहे हैं सारी अना निकल जाती है बंदे की। उसके बाद क्या होता है अब मगरिब का वक्त हो गया आम दिनों में बंदा मोमिन को क्या फिक्र लगी होती है हाय नमाज नमाज और खास तौर पर मगरिब की नमाज निकलती है तो दिल को हाथ पड़ता है। हाँ ये अलग बात है मॉल में हो तो पता ही ना चले बाहर अंधेरा हो गया अल्लाह माफ करे सबको। अब क्या होता है कि मगरिब का वक्त है का कोई नमाज नहीं पढ़नी अकल में आती है बात मगरिब का वक्त हो रहा है नहीं पढ़नी चलो सफर अब बस गाड़ियों में बैठो बसों में बैठो सीधी सड़क है। अब अरफात से लेकर आपको कहाँ पहुंचना है मुज़दलिफा। अच्छा ये जो अरफात का दिन था ना तो वहां हज का खुतबा होता है मस्जिद नमरा है अगर अल्लाह आपको ले जाए कभी तो याद रखिए कि मस्जिद नमरा एक इस तरह की सिचुएटेड है कि उसका कुछ हिस्सा अरफात की हद से बाहर है बड़े बड़े साइन लगे हुए हैं अगर वहां कोई खड़ा होगा या वहां बैठा रहेगा और अंदर नहीं गया उसका हज नहीं होगा। हदें दिल का हुदूदुल्लाह उस खुतबे को सुनना होता है अरबी में होता है हमारे जैसे पाकिस्तानी बेचारे जो जाते हैं उनको समझ ही नहीं आता कई तो इतने बदकिस्मत में है कि वो वहां जाके अपनी अलग जमातें कराते हैं ये अरबों के पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते। खाना काबा में रहते हुए लोग नमाज नहीं पढ़ते कहते हैं ये वहाबियों की नमाज है जिनको वहाबी कहते हैं वहां जाके देखते हैं तो वहां अक्सरियत वही दिखती है वो वहां अपनी नमाजें पढ़ते हैं ये जमा नहीं करते कई लोग कहते हैं लो इतनी दूर आए इबादत करने तो नमाजें भी थोड़ी कर लें। लेकिन बंदा रदी तो बिल्लाह रब्बन बहरहाल फिर वो उसके बाद दुआएं मांगे आप उसके बाद गाड़ी बस में बैठे अब सफर क्या है मुजदलफा पहुंचो। ईशा और मगरिब दोनों मुजदलिफा पहुंच के पढ़नी होती हैं सफर थकन मेरा ले जब हम पहुंचे थे तो रात के को 2-3 बज रहे थे और हम पैदल पहुंचे थे अखीर। अच्छा मजे की बड़ी बातें होती हैं वहां जो हम रात रात चलते देख रहे थे अब जितना अल्लाह ताला ने वहां सख्तियां ये इस तरह की रखी है वहां के लोगों को दिल भी बड़े खुले दिए पूरे पूरे कंटेनर होते हैं जिसमें वो दूध बांटते हैं, लबन है, जूसेस है। बड़ा मजा आ रहा था। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे। अब वो शुरू हुए, पहले तो बस में थे। खैर जब चले, भूखा प्यासा भी होता ही है बंदा। अच्छा वो जो चीज ट्रक बांट रहे हैं ना, वो वहां खड़े हो जाए। उन्होंने लबन का थैला पकड़, वो पकड़ लो, वो मुफ्त दे रहे, वो मुफ्त दे रहे। हमारे कल्चर में तो मुफ्त चीज ही बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा उन्होंने थैले भर लिए, जब चलना पड़ा ना, एक एक करके सारे सफर में जोड़े। क्या वो हम, यानी वो थैले उठा के कौन फिरे जूस के और पानी के और दूध के, जो शुरू में लिए वो आधे रस्तों में फिर वो छोड़े पानी की बोतलें, क्योंकि इतना बंदा थक चुका होता है। 6-7 मील मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा बनता है। और जिनको आदत ही ना हो, हम पाकिस्तान में रहते हुए तो वॉक के आदि भी नहीं होते। दरवाजे पे तो माशाल्लाह हमारे गाड़ियां होती हैं, तो आखिर वो कहते हैं कि खाली हाथ बंदा वहां पहुंचता है। तो फिर मुज़दलिफा में पहुंच के वहां फिर आपने मगरिब और इशा जमा करके पढ़नी है। और क्या करो, अब सो जाओ, खबरदार कुछ किया तो। बस मुज़दलिफा की रात में सोना, और कहाँ सोना है, खुली सड़क पे। कंकर चुभते हैं वहां तो, कंकर ही अगले दिन उठ के मारनी है ना, तो वहां सो जाए। यकीन करें, होश नहीं होता कि आपके साथ कौन सोया हुआ है। जब सुबह उठ के देखें तो कचरे के ढेर के पास आप सोए हैं। उस दिन जो बंदे को अपनी औकात समझ आती है, वल्लाही कोई रिवायती इबादत नहीं है हज में। अल्लाह ताला किस तरह से वहां पहुंचवाता है और कहता है कि पहुंचो। असल ये है कि दुआ करो, हज करो, फिर उसके बाद 10 दिन कल सुबह उठे, फजर वहां पड़ी, अब आपको मक्का जाना है। अब आप देखिए, मक्का से जूं चलते चलते फिर वहां से फिर इधर आए, अब अगला 10 का दिन आपको मक्का पहुंचना है। आज आपने कुर्बानी भी करनी है, बाल भी काटने हैं, तवाफ इफाजा भी करना है, सफा मरवा की सही भी करनी है। 5 काम है। रन खत बोलते हैं, रा नून, रा रमी, नून नहर, खा खल, और तो तवाफ इफाजा। ये हज के 5 है। रन खत, रा नून, खा, तो इसका एब्रीवेशन याद कर लें तो फिर कभी नहीं भूलते अल्लाह के हुक्म से। पहले कोई कुछ कर लें, कोई बाद में कर लें, लेकिन अब मक्का पहुंचना है। अब ये भी एक इशू है, वो बहुत दूर है, जरा वो पैदल का सफर नहीं है, 13 मील है तकरीबन, तो लिहाजा फिर पहुंचना है। अब वहां जाएं तो पूरी की पूरी मखलूक वहां पहुंची हुई है। वो तवाफ कभी नहीं आपको भूलेगा, मुझे तो नहीं भूलता। ऊपर के फ्लोर में जगह मिली थी, मेरा ख्याल है कि कई किलोमीटर का तो एक चक्कर होता है। बस ये है हज, मुशक्कत, मुख्तलिफ, तकलीफ। यानी उस वक्त वाकई बंदा अल्लाह का कुर्ब अगर पा ले तो पा ले। आपको इसमें सरे जमीन पे बिठा दिया कि जिंदगी में अगर होमलेस हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कई दुनिया में लोग हैं जिनके घर नहीं है, खाना ना मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह जब लोग जाते हैं तो इसका तस्करा अल्लाह ताला ने इधर कर दिया कि वस्कुरूहु कमा हदाकुम, उसको याद करो, उसका तस्करा करो, उसने तुमको हिदायत दी, अपने घर में ले गया। अब आप बताइए कि ये जो मैं बातें आपको थोड़ी सी हज के तरीके की बता रही हूँ, ये कुरान में नहीं है, कहाँ है, हदीस में। नबी सल्लम ने फरमाया कि खुजू अन्नी मनासिककुम, मुझसे सीख लो अपने हज के तरीके। हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था अल्लाह ताला से खाना कबा बनाने के बाद, वारीना मनासिकना, अल्लाह हमें तरीका सिखा दे। अल्लाह नबियों के जरिए ये तरीके सिखवाता है ताकि लोगों को नबी की, लीडर की, उस्ताद की अहमियत का पता चले। देखिए किताबों में बीसियों बार बातें पढ़ी हों, वो समझ आती है जो सुन के समझ आती है। यही बात अल्लाह ताला हज के जरिए सिखाता है कि जो नबी होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं। बहरहाल इसके बाद फिर 3 दिन होते हैं। अब अगले दिन जो 10 ज़िलहज है उसमें कुर्बानी करके ये सब करके वापस मीना में आना होता है। 11, 12, 13 और 14 का भी कुछ हिस्सा, अगर कुछ लोग कहते हैं 14 पूरा, कुछ कहते हैं उसके अलग, लेकिन ये जो दिन होते हैं ना, इनमें हुक्म क्या है कि बंदा मीना में रहे, कुछ नहीं करना होता सिवाय आम इबादत के। और वहाँ जमरात हैं, जमरात उनकी जमा जगह है ऐसे, अब तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बना दी है, लंबी सीधी सी है और उसके इर्द गिर्द उन्होंने ब्रिजिस बना दी हैं, वहां पे पत्थर मारने होते हैं। ये क्या था, ये किस बात की अलामत है? देखा, मुझे पहले पता था, ये शैतान नहीं है। जमरात वो जगह है जहां शैतान ने हजरत इब्राहिम और बीबी हाजरा को बहकाना चाहा था। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे और अपनी बीवी को अल्लाह के हुक्म से वहां छोड़ने जा रहे थे, तो शैतान ने यहाँ आके बहकाया था कि क्या कर रहे हो, घर तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, और बीवी को भी कह दिया ये, यानी यहाँ उसने फिसलाने की कोशिश की, और हजरत इब्राहिम ने वहां से पकड़ के ना उसको यूं मारा। अल्लाह को इब्राहिम की वो अदा इतनी प्यारी लगी कि अब तुम सब भी मारो। असल में हज है ना, वो अदाओं का सफर है। आप अगर सुनना चाहें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक सीरीज है अभी वेब पे, आप सुनिए, ये भी आप होमवर्क में ले लें। अब तो हज करना है, उसका नाम है। पूरा इब्राहिम की अदाएं, बीबी हाजरा के कदमों पे मर्दों को चला दिया उम्रे में, और हजरत इब्राहिम की दीवानगी उन लोगों को जिनको लोग वल्ला ही कुछ समझते ही नहीं है दुनिया में, अल्लाह उनकी इतनी कदर करता है कि उनकी अदाओं को महफूज कर लेता है। वो कदम, वो जगह जहाँ इब्राहिम ने कदम रखे, अल्लाह ने उस जगह को मुकाम इब्राहिम बना के सारी दुनिया के लोगों के लिए एक हिदायत की निशानी बनाई। हदीस में आता है कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं, लोग उनको कुछ नहीं समझते, वल्लाह ही ऐसे होते हैं, सीधे सादे, ला दरर व ला दरार। चूंकि लोगों को उनसे कोई फायदा नहीं होना, कोई कारोबारी डील नहीं होनी, कोई उन्होंने उनसे कोई सौदा नहीं खरीदना, ना कोई रिश्ता लेना ना देना, लोग उनकी केयर नहीं, इज्जत बड़ी करते हैं लोग उनकी, लेकिन उनसे प्यार भी दिल में होता है, लेकिन उनकी वो अवभगत नहीं करते जो अपनी बिजनेस डील्स की होती है। मुझे लगता है आज अगर हम इब्राहिम को सामने रखें ना, तो वो ऐसे ही थे, इधर उधर उठ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो अल्लाह कहता है दीवानगी में करते जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह की निगाहों में उस बंदे की इतनी इज्जत है, इतनी वैल्यू है, कि अगर वो अल्लाह के नाम पे कोई कसम खा दे, तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा करने के लिए वो काम कर देगा। असल ये कि आप अपने अंदर वजन पैदा करें, जिस्म का वजन नहीं, ईमान का, कीदे का। आपकी मुंह से बात निकलेगी ना, वो तो दूर की बात है, आपकी निगाह से तकदीरें बदल जाएंगी। अल्लाह इकबाल का एक शेर है ना, कि निगाह है मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अल्लाह के नबी ने भी तो आसमान को देखा ही था ना, तो किबला बदल गया था। फलनवल्लियन्नक किबलतन तरदाहा, अल्लाह को बड़ी कदर है अपने बंदों की, मैं और आप क्या कदर करेंगे। हम तो ऐसे लोगों को मुल्ला मौलवी और न जाने क्या हाजी नमाजी समझ के ये बड़े नेक लगे रहे इनको अपने कामों में, हम उनकी वो कदर नहीं करते। अच्छा, इल्म वालों की भी बड़ी कदर करते हैं। बस अगर मैं आपको इल्म सिखा रही हूँ ना, मुझे यकीन है आपके दिल में बड़ी कदर है, मेरी हो कि इल्म की हो, मैं तो चाहूंगी कि इल्म की हो। इल्म वालों की भी हम बड़ी कदर करते हैं, लेकिन हम इबादत गुजारों की कदर नहीं करते, उनकी परवाह कम होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इबादत और एतात का मजमुआ थे। क्या इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम काल अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन, जब उनके रब ने उनको कहा कि बात मान लो, कहते अल्लाह मैं तो पहले ही माना हुआ हूँ। ये रूहानियत लाने की ज़रूरत है इबादत के नाम पे। अब इजाज़त दे दी, अल्लाह कहते देखो यहाँ आगे भटके हुए थे। मैं इस आयत को भी जब सुन रही थी ना, बोल भी रही थी अभी आपको सुनाई, कि वह इन कुंतुम इन कबल ही लमिनद्दालीन, सोचो तुम भी तो कल किन लोगों में से थे, भटके हुए थे, हज की हकीकत से ना वाकिफ थे, हज की बस एक शक्ल रह गई थी, रूह ख़त्म हो गई थी, लोगों ने उसको बदल दिया था, और तुम्हें हज का शौक ही नहीं था। मैंने देखा कि जब तक खुद इस किताब से हम हज के तरीके नहीं पढ़ते ना, हज का वो शौक नहीं आता, बस लगता है एक बोझ है पढ़ना। हमें ये फिक्र है कि बच्ची 16 साल की होगी, इसकी शादी करनी है हमारे कल्चर में 17 साल बालिग लड़की की शादी। कितने लोग हैं हमारे कल्चर में, मुस्लिम इंडो पाक कल्चर की बात करती हूँ, जिनको बालिग होने के बाद बच्चों के हज की फिक्र है। शादी तो नसीब से हो ही जानी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपके बच्चे बालिग हो गए तो हज कराएं उनको। हम मक्का के ऊपर से गुजर के आते जाते हैं, पाकिस्तान से गुजरते हुए आप यूके आ जाएं या आप अमेरिका कनाडा, जहाँ हम काबा से गुजरते हैं। 18 18 साल से मैंने लोगों से जब भी कभी बात की है, 20 साल से पाकिस्तान आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, आज तक हज की तौफीक नहीं हुई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके दिल में हज का ख्याल ही नहीं आया, ना सोचा ना गौर किया, फिर जब वो मरे तो अल्लाह को परवाह ही नहीं कि वो यहूदी हो के मरा या नसरानी। अब ये हदीस बड़ी आम है, लेकिन इसकी हिकमत थोड़ी सी आपको बता दूं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी और ज्यूइज्म में हज नहीं था, इस्लाम में हज है, यहूदी हज नहीं करते, नसारा ने नहीं किया, तो गोया के उसका जोड़ अल्लाह ने उनसे जोड़ दिया। तो हज की फिक्र करें, छोड़ें जो बच्चों के रिश्तों के जो पैसे जहेज के रखे हुए ना, उसे हज कराएं, रूह आएगी आपके बच्चों में। कैसे माएं तड़पती हैं, वल्लाह ये मेरा दिल पीसता है जब मेरे पास लोगों के फोन आते हैं, मैं सो नहीं सकती, हिचकियाँ औरतों की, लोगों की, तड़प तड़प के रोती हैं, कोई कहीं से आ जाता है, कभी कहीं से, मेरा दिल जैसे वो जैसे चॉप हो जाता है ना, चीज़ कटता है कि अल्लाह ये माँ सिर्फ 12 साल का बच्चा, और माँ की आंखों का यानी आंसू बना पड़ा। लेके जाए, मैं आप सबको नसीहत करती हूँ अगर आप इसको माने, खास तौर पे जो बच्चे वेस्ट में रहते हैं, जिसका बच्चा और बच्ची और बच्चे जो भी हैं बालिग हो चुके हैं, पहली फुर्सत में हज की नियत करें और जाने से पहले बच्चों को उसी नाते से टीच करें, सीरत सिखाएं, हज का टॉपिक पढ़ाएं, कुरान की वायतें पढ़ाएं। कहाँ नहीं उनके दिल पिसलेंगे, ये पत्थर तो नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं, इंसानों के बच्चे हैं। इतने आज लोग परेशान हैं बच्चों, क्या तो दिल तो खुद सख्त कर दिए मादी तालीम के साथ, मादे की मोहब्बत ने, पत्थरों की मोहब्बत ने हमारे बच्चों को स्टुन किया हुआ है। गरीबों का कसूर नहीं, वो कितनी ओवरनाइट चेंज आ जाती है, पहले ठीक थे, जो ही इस स्कूल में गए खराब हो गए, इस उम्र में खराब हो गए। मैं कहती हूँ मैं आपको क्या वजीफा बताऊँ, इसका वजीफा यह है कि आप इसके साथ बैठे बात करें। बेटियों का ये हाल है, बेटों का ये हाल है, इल्ला माशाल्लाह पूरी दुनिया में ये हालात है। कहता है कि बच्चे ने मुझे आज तक तकलीफ ही नहीं दी, एक ऐसी तकलीफ दे दी है कि अब आंखों से आंसू नहीं खत्म होते। कोई कहता है इस बच्ची ने आज तक हमें कभी दुख नहीं दिया, एक ऐसा सदमा उसने दिया, कहती बाप वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। क्या करें, यकीन करें कि वो वक्त इतना करीब है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि बगैर औलाद वाले लोगों को लोग देख के कहेंगे कि तुम कितने खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने तुम्हें इस आजमाइश में नहीं डाला। आज बिल्कुल वो सबाब है। तो अपनी बच्चों को, अपनी नस्लों को लेके जाइए। बेटे के अगर आपने बिजनेस के लिए कोई पैसा रखा है, छोड़े, मिल जाएगा उसके नसीब से, आप उसको हज कराएं, हर साल लेके जाएं। छुट्टियां होती हैं, ये डिज्नी वर्ल्ड, ये फलानी वर्ल्ड, ये फलां फलां, चले नेचर दिखाएं, बात भी बने। वहां भी जाते हैं तो वहां भी शैतान ही नाच रहा होता है, कहीं नंगी औरतें और कहीं म्यूजिक और कहीं शोज। क्या दिया हमने अपनी नस्लों को, आप उनको हज पे ले जाएं, उम्रे पे ले जाएं, कभी बैतुल मकदस का बना लें, कोई उनको इस्लामिक चीजें दिखाएं, उनके दिल जुड़े। हम बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजों में रह के अपने बच्चों को पालते हैं। और यकीन करें अगर इस उम्र में बच्चा हज कराता है या उम्रा करता है, तो आप देखें कि नबी से सल्लम से मोहब्बत होनी तो लाजमी है। जब उन गलियों में बंदा फिरता है, आंखों से आंसू आते हैं। और अक्सर लोग जो पूछते हैं, मैं उनको कहती हूँ अपने साथ सीरत की बुक लेके जाया करें, सीरत की ऑडियोज लेके जाएं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्वे से 5 स्टूडेंट गए हैं, और मैं के घर वालों से ज्यादा मुझे इंतजार है कि वो आएंगे तो क्या मुझे वो सुनाएंगे। मुझे पता है कि जो उनका दिल वहां तड़पन है, मुझे उनकी बातों से जाने से पहले ही अंदाजा था कि क्या आपको मिला। और हकीकत है, जो लोग जाते हैं वो कहते हैं पहले भी गए थे, वो हज तो खेल कूद के ही आ गए थे। कुछ शादी के फौरन बाद एक होता है भी, मियाँ बीवी को शुरू में ही शादी के फौरन बाद हज पे जाते हैं, कहते हैं वो तो खेल खुल के बस हंस बोल के आ गए थे, असल अब हज किया जो पढ़ने के बाद किया। तो अल्लाह ताला कमा हदाकुम, ये हिदायत कोई छोटी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको छोटा ना समझें। वल्लाही मैं अपने दिल की गहराई से कह सकती हूँ कि आप यहाँ अगर आके बैठते हैं और फोकस होके बैठते हैं, आपका ये भी हज है। मैं नहीं कहती कि यह हज का नेमल बदल है, नौजुबिल्ला, या कोई फतवा नहीं दे रही, लेकिन अल्लाह की किताब सामने जब खुलती है तो वही दिल की हालत होती है जो अल्लाह के घर को देख कर होती है। कितना तड़पते हैं लोग, हाय काबे के अंदर जाएं, चाहते हैं तो तुम इस्लाम के अंदर आ जाओ, उदखुलो फिस सिल्मी काफा, वही खुशी है। कितने लोग कहते हैं कि वहां जाके हम अल्लाह के नबी के तबरुकात देखें और ये करें और वो रहमत के परनाले के नीचे नहाएं और काबे का एक टुकड़ा मिल जाए, उधर से जो टुकड़े बटते हैं वो लोग लेके आते हैं। यहाँ बड़ा इल्म, यहाँ आपका काबा है, वो तो रब्बे काबा का घर है ना, ये रब्बे काबा का कलाम है। सच बताएं, आपका घर और आपके बोल कौन सी चीज आपको ज्यादा प्रेजेंट करती है? घर तो आप आज बदलें कल बदलें, कभी छोटा था कभी बड़ा हो गया, नया था पुराना, पुराना था नया, बदल लेंगे ना, लेकिन आपका कलाम किसका है? तो हज और काबा बड़ी बात है कि अल्लाह का कलाम बड़ी चीज है, इससे कितने गाफिल हैं। आज भी इस शहर में आप जाके देखें कितने लोग तड़प रहे हैं हज के लिए, हाय हज, हाय हज, काबे की चादर और मदीना की और रोजे की जालियां, और यहाँ इल्म पड़ा होता है उसको नहीं लेते, नो थैंक्स, एक टिश्यू पेपर की तरह उसको पकड़ के हम कुरान को दो उंगलियों से लेते हैं, जरा मुश्किल ही छोड़ के भाग जाएंगे। तो करिए लमीन तालीन, भटके वो से निकले हो, सोचो जिंदगी में कितने हैं डिप्रेशन के अंधेरे थे, कितने अंधेरे थे, फिर क्या बंदा इस हिदायत की नेमत को कम जान सकता है। हम रिचुअल्स में खो जाते हैं, अल्लाह ताला हमें रूह दिखाता है कि दीन की रूह समझो, और रूह मिलती है अल्लाह की किताब से। अगर किताब नहीं है तो हज भी कुछ नहीं देगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि रूह मिल जाए।
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين